Om Shanti. Good morning. Honorable Chairman, most respected Divine Brother, Rajyogi Atam Prakash Bhaiji, Sister Shweta Behen, Sabha mein upasthit Priya Bhaiyo, Behno, Bachcho aur Dosto. Ek bar kya hua, teacher class mein gayi aur bachcho ko kaha ki bachcho aaj hum ek exercise karenge. और एक्सरसाइज ये होगा कि मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी. बट एक्सरसाइज इस कहानी का एंडिंग में नहीं आपको बताऊंगी, उस कहानी का अंत कैसे होना चाहिए ये आपको पता लगाना है. और उस कहानी से आपने क्या सीखा, व्हाट इज द समरी ऑफ द स्टोरी, यू हैव टू डिवाइस इट. और बच्चों से कहा, कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक जंगल में दो दोस्त रहते थे, एंट एंड अ ग्रास हॉपर, चींटी और टिड्डा. बहुत अच्छे दोस्त थे लेकिन दोनों में संस्कार बहुत डिफरेंट था. चींटी जो थी द एंट, बहुत हार्ड वर्किंग थी, हमेशा उमंग उत्साह खुशी में. टिड्डा जो था वो थोड़ा लेजी टाइप का था. चींटी को मालूम थी कि बारिश आने वाली है तो उसको भोजन इकट्ठा रखना है, तो उसने बहुत मेहनत करके अपने घर में भोजन रखा था. टिड्डे ने कोई व्यवस्था नहीं की. अचानक क्या हो गई, बारिश आ गई, चींटी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, टिड्डे को प्रॉब्लम हो गई. ग्रास हॉपर टिड्डा चींटी के पास जाता और कहता है, माय डियर फ्रेंड चींटी, क्या आप मुझे मदद कर सकते हो, मेरे पास भोजन नहीं है. टीचर कहानी को यहां स्टॉप करती है और बच्चों से कहती है कि मैं आपको 10-15 मिनट का टाइम देती हूं. इस 10-15 मिनट में आपको यह पता लगाना है कि चींटी ने टिड्डे को क्या जवाब दिया होगा विद अ मॉरल ऑफ अ स्टोरी. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. 15-20 मिनट के बाद जब टीचर उनके बच्चों का आंसर शीट देख रहे थे, अचानक उनको एक आंसर शीट में एक उत्तर मिला विच शॉक्ड हर. तो उन्होंने इस बच्चे की मामा को फोन किया और उस मां को कहा, पता आपके बेटे ने आज क्या लिखा. तो मामा ने पूछा, मैडम एक्चुअली हुआ क्या. तो टीचर ने कहा, फॉर द पास्ट 30 इयर्स ऑफ माय टीचिंग करियर, हर साल मैं एक्सरसाइज बच्चों को देती हूं और हर साल मुझे स्टैंडर्ड जवाब मिलता है, पता आपके बच्चे ने आज क्या लिखा. तो मां ने पूछा, आखिर मेरे बच्चे ने क्या लिखा. तो टीचर ने कहा कि कुछ बच्चों ने ऐसा लिखा था कि जब टिड्डा चींटी के पास गया तो चींटी ने कहा, हे माय फ्रेंड टिड्डे, जब आपको काम करना था तब तो आपने काम नहीं किया, अभी आपको पश्चाताप से गुजरना पड़ेगा. और उन्हें मॉरल ऑफ द स्टोरी में लिखा, एन आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप, खाली मन शैतान का घर. कुछ बच्चों ने ऐसा लिखा कि जब टिड्डा चींटी के पास गया तो चींटी ने कहा, मैं आपको भोजन नहीं दूंगी लेकिन भोजन कैसा इकट्ठा करनी है उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करूंगी. और उस बच्चों ने लिखा था, राइट, डोंट ऑलवेज कैरी द चाइल्ड इन योर आर्म्स, टीज द चाइल्ड हाउ टू वॉक. हमेशा बच्चों को गोद में उठाकर नहीं चलो, उसको टेक्नोलॉजी बताओ कि कैसे चला जाता है. कुछ बच्चों ने ऐसा लिखा, जब टिड्डा चींटी के पास आया तो चींटी ने कहा, आप तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, आपको मदद नहीं करूंगी तो किसको करूंगी, थोड़ा सा भोजन दे दिया. और मॉरल ऑफ द स्टोरी में लिखा, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, समय पर आने वाला दोस्त सबसे अच्छा दोस्त होता है, पता आपके बेटे ने क्या लिखा. मां ने फिर पूछा, आखिर मेरे बेटे ने लिखा क्या. तो टीचर ने जवाब दिया, आपके बेटे ने लिखा कि जब टिड्डा चींटी के पास आया तो चींटी ने सारा का सारा भोजन टिड्डे को दे दिया और चींटी मर गई, द एंट वॉज डेड. और फिर टीचर ने कहा, आपके बेटे ने मॉरल ऑफ द स्टोरी में लिखा, जीसस डाइड फॉर हिज फेलो बींग्स, Jesus died for his fellow beings. Can't a small ant die for a grasshopper? क्या एक छोटी सी चींटी अपनी नन्ही सी जान अपने दोस्त के लिए नहीं दे सकती है. किसी ने क्या खूब कहा है, ये तमाम जिंदगी भी कम है एक दोस्ती निभाने के लिए, ये तमाम जिंदगी भी कम है एक दोस्ती निभाने के लिए. ना जाने लोग कैसे वक्त निकाल लेते हैं दुश्मनी के लिए, ना जाने लोग कैसे वक्त निकाल लेते हैं दुश्मनी के लिए. बहुत छोटा सा जीवन है हमारा, राइट. और अगर आप सारी दुनिया का सिनेरियो को देखेंगे फ्रॉम अ मैक्रो लेवल, अगर हम माइक्रो लेवल पर आते हैं विश्व में अगर हम देखेंगे तो इतना लड़ाई झगड़ा, इतना नफरत, ज्यादा उस पर डिटेल में नहीं जाएंगे, बट एक बात पर मैं जरूर आऊंगा. थोड़ा सा अगर हम देश के अंदर देखते हैं तो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, पानी के नाम पर हम लोग युद्ध कर रहे हैं. ओके, लेट्स कम टू अ लिटिल माइक्रो लेवल. एक फैमिली के अंदर देखते हैं तो फैमिली के अंदर फैमिली मेंबर्स, वो तो एक ही परिवार के ना, belong to the same unit. फिर भी इतना conflict कि एक छत के नीचे हम लोग एक दूसरे को सहन नहीं कर पा रहे हैं. और अगर हम और एकदम माइक्रो लेवल पर आए तो अगर हम देखते हैं कि हम दूसरे लोग से तो नाराज हो ही रहे हैं लेकिन काफी बार हम अपने आप से भी नाराज हो रहे हैं. मेरे बहुत सारे हैबिट्स हैं, संस्कार हैं, बिहेवियर है जिसको मैं लेट गो करना चाहता हूं. दो तीन दिन से आप यहां पे सुन रहे हैं, बहुत भाई बहने मुझे मिल रहे थे और सभी भाई बहने मुझे यही शेयर कर रहे थे कि स्वामी भाई आप लोग कोई नई बात नहीं बता रहे हमें, ये सब हमको पता है राइट. और हम ये सब छोड़ना भी चाहते हैं लेकिन छूट नहीं पा रहे. और इसलिए आज का टॉपिक है लेट गो, जाने भी दो यारों. एंड यार इज योर, यू आर द बेस्ट फ्रेंड. ये परिवर्तन, लेट गो का अर्थ होता है परिवर्तन, लेट गो का अर्थ होता है डिलीट करना. आप देखिए कंप्यूटर में अगर एक वायरस इन्फेक्टेड फोल्डर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस वायरस इन्फेक्टेड फोल्डर को क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, रिसाइकल बिन में भेजते हैं, रिसाइकल बिन से हमेशा के लिए लेट गो. हम यहां पर क्यों नहीं कर पाते, इस कंप्यूटर को तो बनाया हमने है ना, व्हाई आर वी नॉट एबल टू डू इट. ऐसे व्हेन आई गिव अ सेशन ऑफ मेमोरी, तो मेमोरी सेशन मुझे लेना बहुत अच्छा लगता है, तो बच्चों के साथ बड़े भी बैठे रहते हैं. बच्चों को तो ये मेमोरी का जो टेक्नोलॉजी है ये इनको पढ़ाई में तनाव प्रबंधन के लिए मदद करता है, लेकिन काफी बार बड़े कहते हैं हमारे लिए मेमोरी की क्या जरूरत है. एक्चुअली हम बड़ों को मेमोरी का प्रॉब्लम नहीं है, हमारा प्रॉब्लम पता क्या है, हमारा प्रॉब्लम ये है कि जो हमें याद करना चाहिए वो भूल जाते हैं और जो हमें भूलना चाहिए वो याद करके घूमते रहते हैं. आज मुझे क्या 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 काम करना याद नहीं होगा लेकिन 3 महीने पहले उसने मुझे ऐसे बोली थी, ऐसे की थी, वो आज भी याद रहता है. और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इतने बुद्धिशाली लोग हैं, हर दिन सुबह उठते हैं वो सारे वायरस इन्फेक्टेड फोल्डर्स को याद करते हैं, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, और हमारा सिस्टम हैंग हो जाता है, सिस्टम बिकम्स हैंग. तो कैसे हम डिलीट करें. और आज आप और हम बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है, इसका मैं आपको एक साइंटिफिक बेसिस बताने की मैं कोशिश करूंगा. डिलीट क्यों नहीं कर पाते हैं, वन इज वी आर नॉट अवेयर ऑफ द टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी आज हम सीखेंगे. नंबर टू, अगर हमारी उंगली में कांटा चुभ गया है, अ थॉर्न इज स्टक ऑन माय फिंगर, अगर मुझे उसको डिलीट करना है तो आई हैव टू यूज अ मोर पावरफुल नीडल, शक्तिशाली सुई की जरूरत है तभी हम उसको डिलीट कर सकते हैं. उसी तरह राइट, दुनिया का परिवर्तन तो बहुत दूर की बात है, हम अपने अंदर जो संस्कार हैं, जो हमें पता चल रहा है कि ये मुझे तकलीफ दे रही है, एक तो रियलाइजेशन कि यस आई नीड टू चेंज, आज तक मैं गुस्सा कर रहा था, आज मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे गुस्से को निकालना है, नफरत को निकालना है, फिर भी हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं. द रीजन इज किसी ने मुझे धोखा दिया, किसी ने मुझे हर्ट किया, किसी ने मुझे तकलीफ दी शब्दों से वाचा से कर्मणा से, तो वो जो हुआ ना वो बहुत भावनाओं के साथ मेरे पास आया. कंप्यूटर और मेरे में ये बड़ा अंतर है. कंप्यूटर में अगर आपका बहुत वायरस इन्फेक्टेड फोल्डर्स हैं आप इमीडिएटली डिलीट करते हो, लेकिन उस वायरस इन्फेक्टेड फोल्डर्स में अगर कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी था, कुछ अच्छी स्मृतियां थी, तो आप वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बोलोगे इसको पूरा डिलीट मत करो, इसको थोड़ा सा ट्राई करो ना मैनेज करना, बिकॉज दोस फोटोग्राफ्स हैड लॉट ऑफ इमोशंस, बहुत भावनाएं थी उसमें. तो जब किसी ने हर्ट किया, मुझे पेन किया, वो सारे इमोशंस के साथ मेरे में जुड़ा, तो अगर मुझे उसको डिलीट करना है, अगर मुझे उसको लेट गो करना है, तो मुझे उससे ज्यादा पावरफुल इमोशंस को जनरेट करना पड़ेगा. आई हैव टू जनरेट इट, देन ओनली आई विल बी एबल टू डू इट. अब कैसे करें, उसकी टेक्नोलॉजी क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, उसका एल्गोरिदम क्या है, उसका फ्लो चार्ट क्या है. मैं आपको एक फिल्म जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, द नेम ऑफ द फिल्म इज तारे जमीन पर. आप में से मैक्सिमम भाई बहनों ने फिल्म देखी, कितनों ने देखी है वो जरा हाथ उठाए, ब्यूटीफुल राइट. मैं उस फिल्म का एक छोटा सा क्लिपिंग दिखाता हूं और उस क्लिपिंग के डायलॉग का रहस्य को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. इसमें दो कैरेक्टर्स को दिखाया गया, एक है दैट बॉय हु वाज सफरिंग फ्रॉम डिसलेक्सिया, हिज नेम इज ईशान, और उसके जो सर हैं हिज निकुंभ, निकुंभ सर.
आज मैं तुम्हारी रह जा रहा हूं, मेरी आंखों के ठीक सामने राजन दामोदर की संगत का तुम पर अच्छा ऐसी अपेक्षा करता हूं। समझ गए? दृष्टि को और कविता का ठीक है, शुरू करो राजा।
दृष्टिकोण। ऊपर से देखूं तू है खुला आसमान, बादलों से भरा भरा तेरा ये जहां। जब तक ना तरस जाए पीने को हाथी, या कूद के दिखाए ये मेरे साथी। साइकिल की घंटी या कंकड़ या माटी, या तुझ पे बरस जाए अंधे की लाठी। तब सबको तू दिखे है पानी सी लदी, तू तो है तू अपनी प्यारी सी नदी।
बहुत अच्छे। हाँ तो ईशानंद किशोर अवस्थी, कविता का अर्थ समझाओ।
बिफोर ईशान टेल्स यू द वो कविता को रिपीट करता है, इसमें जो सारे कैरेक्टर्स है ना, तो ईशान की जो मम्मा जो थी वो बहुत स्नेही माँ थी। पापा वॉज ऑल्सो ओके, बट देयर वाज सम कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। उनके सभी टीचर्स चाहते थे कि ईशान को बहुत अच्छे मार्क्स मिले, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन सभी कैरेक्टर्स में निकुम सर वॉज ओनली एबल टू आइडेंटिफाई हिज प्रॉब्लम। क्यों? फिल्म अगर देखी है तो आपने देखा होगा क्योंकि निकुम सर को बचपन में वो खुद प्रॉब्लम था, क्योंकि बचपन में उसको खुद वो प्रॉब्लम था, इसलिए वो ईशान के सिम्टम्स को अचानक समझ पाए। राइट, यहां तक तो ठीक है। अभी हम इसका अर्थ को समझते हैं।
जो दिखता है हमको लगता है, और जो नहीं दिखता हमको लगता है नहीं है। लेकिन कभी कभी जो दिखता है वो नहीं होता, और जो नहीं दिखता वो होता है।
क्या डायलॉग बोला उन्होंने? जो दिखता है हमको लगता है, जो नहीं दिखता है हमको लगता नहीं है। जो दिखता है वो नहीं होता है, जो नहीं दिखता है वो होता है। अब डिस्लेक्सिया के हिसाब से ईशान बी का डी हो जाता है, एफ का जी होता है, दैट्स डिफरेंट। अब उसका जो दोस्त है ना, एक फिजिकली डिसेबल दिव्यांश बच्चा राजन, वो एंड में एक बहुत अच्छी बात कहता है, वो हम सुनते हैं।
मतलब
अरे क्या दिखता है नहीं दिखता है कर रहे हो?
कवि कहता है कि जब वो नदी को देखता है उसमें आकाश का प्रतिबिंब दिखता है। इस प्रतिबिंब को वह अलग अलग वस्तुओं से भंग करता है और नदी का चित्र फिर से उभर आता है।
उत्तम, अति उत्तम। मीनू पटेल बैठ जाओ। हाँ तो बच्चों, ऊपर से देखूं तुम है
खुला। एक्चुअली कविता का असली मतलब तो तुमने समझाया, बाकी सब ने तो रटे हुए उत्तर दिए।
उसका दोस्त राजन, हु इज अ डिफरेंटली एबल बॉय, उसको डिस्लेक्सिया का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो उसका उत्तर सुनकर कहता है कि ईशान सही उत्तर तो आपने दिया, बाकी सबने तो रटे हुए उत्तर दिए। अब बताइए इस जो डायलॉग का अर्थ क्या है? जो दिखता है वो नहीं होता है, जो नहीं दिखता है वो होता है। हमारे जीवन का जो सारा प्रॉब्लम है ना, विज्ञान क्या करता है, जो दिख रहा है सीइंग इज बिलीविंग, और उसको वो परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा है। आध्यात्म जो नहीं दिखता है, जो सॉफ्टवेयर है उस पर वो फोकस करता है। एंड पीपल लाइक आइंस्टीन, हु नॉट ओनली मास्टर्ड फिजिक्स बट दे वर एबल टू अंडरस्टैंड मेटाफिजिक्स, और मेटाफिजिक्स जो है वो जो दिखाई नहीं देता है। और आज मैं आपको फिर से वो क्वांटम डायनेमिक्स का छोटा सा इनपुट मैं आपको देना चाहूंगा। तीन दिन से आप ये सेमिनार सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं आपको क्लियर कट बताता हूं, ये सिर्फ सुनने से ये परिवर्तन नहीं होगा। ट्रेनिंग प्रोग्राम का सबसे एक शॉर्टकमिंग ये होता है कि जब हम सुनते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम खुद पर अप्लाई कर रहे हैं, मैं प्रोफेशनल ट्रेनर्स की बात कर रहा हूं, लेकिन यहां पर आप उसका एक्चुअल फाउंडेशन, लेट गो अगर हमें करना है, परिवर्तन करना है, तो कहां पर हमें ध्यान रखना चाहिए। कल मैं क्वांटम डायनेमिक्स का एक छोटा सा क्लिप लेकर आया था, आज मैं एक और क्लिपिंग लेकर आता हूं, जिसे अगर मैं ये बात कहूंगा तो शायद आप महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि आध्यात्म की भाषा है, क्योंकि ये साइंटिस्ट और इंजीनियर्स विंग की कॉन्फ्रेंस है, तो आई वॉन्ट टू यूज अ साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी। चलिए लेट्स वॉच दिस।
डिस्कवरी चैनल कॉल्ड नोवा, एंड इन नवंबर ऑफ 2011 दे ब्रॉडकास्ट अ शो कॉल्ड The Fabric of the Cosmos, What is Space? It was hosted by Brian Greene, theoretical physicist and professor of physics at Columbia University, who wrote the book called The Fabric of the Cosmos. Here is a 5-minute video clip from that program.
As we examine the fabric of the cosmos...
1 minute, मैं वो वीडियो दिखाने के पहले आपको मैं एक साइंटिफिक उदाहरण देता हूं. हम सभी के पास ये डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड होता है, राइट? तो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जब आप मशीन में स्वाइप करते हो ना, एक्चुअली मशीन क्या करता है, उस कार्ड का वो जो बारकोड है ना, उस बारकोड को कैच करता है. कार्ड तो हमें दिख रहा है, लेकिन हमारा सारा बैंक डिटेल्स, इंफॉर्मेशन, एवरी डेबिट क्रेडिट इज एक्चुअली इन द बारकोड. तो मशीन उस बारकोड को पकड़ता है, और अगर हमें कुछ परिवर्तन करना है तो वी हैव टू गो इन टू दैट बारकोड एंड चेंज इट. आप कार्ड को चेंज करते रहो, नथिंग इज गोइंग टू हैपन. उसी तरह जो दिखता है वो नहीं होता. एक्चुअली क्वांटम डायनेमिक्स क्या कहता है, अगर आप ये होलोग्राफिक यूनिवर्स, हम लोग ने इंजीनियरिंग में आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पढ़ा है, वी हैव लर्न अबाउट ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, देर इज अ न्यू काइंड ऑफ अ प्रोजेक्शन विच इज कॉल्ड अ होलोग्राफिक प्रोजेक्शन. होलोग्राम का अर्थ होता है कि जो हम देख रहे हैं वो सत्य होना जरूरी नहीं है, ये विज्ञान कह रहा है, लेकिन उसके पीछे जो कारण है उसको वो विज्ञान ढूंढता है. क्वांटम डायनेमिक्स, रिलेटिव फिजिक्स या मेटाफिजिक्स इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है. हम ये वीडियो को देखते हैं और फिर हम इसको समझेंगे. वो एक शब्द को यूज करते हैं, एक किताब भी लिखी है द होलोग्राफिक यूनिवर्स, उस किताब में काफी बार एक शब्द आया दी फील्ड. फील्ड मतलब उसकी जो ऊर्जा है, एक बल्ब होता है, उस बल्ब के चारों तरफ एक ऊर्जा होती है. लाइन जा रहा है, हमको करंट दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जितना वो हाई वोल्टेज का होगा, जितना नजदीक जाएंगे उतना उसका वो फील्ड होता है. दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड. उसी तरह अगर हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, ये आत्मा तो है ही, इट इज द पावर स्टेशन, लेकिन पावर स्टेशन के चारों तरफ एक फील्ड होता है, एक ऑरा. स्पिरिचुअल लैंग्वेज में तो हम ये कहते हैं, लेकिन होलोग्राफिक यूनिवर्स इसको बहुत प्यार से स्वीकार करता है. लेट्स लिसन.
एवर मोर क्लोजली वी मे वेल फाइंड फार मोर सरप्राइजेस देन एनीवन एवर इमेजिन्ड. टेक मी फॉर एग्जांपल, आई सीम रियल एनफ, डोंट आई? वेल यस, बट सरप्राइजिंग न्यू क्लूज आर इमर्जिंग दैट एवरीथिंग.
आप देखिए, एक व्यक्ति है, उसके साइड पर वो दिखा रहे हैं देर इज अनदर फील्ड, जिसको हम लोग सूक्ष्म शरीर कहते हैं, बॉडी, एथरिक बॉडी कहते हैं, एनर्जी फील्ड कहते हैं, राइट?
यू एंड आई एंड इवन स्पेस इटसेल्फ मे एक्चुअली बी अ काइंड ऑफ होलोग्राम. दैट इज एवरीथिंग वी सी एंड एक्सपीरियंस, एवरीथिंग वी कॉल आवर फेमिलियर three-dimensional reality may be a projection of information that's stored on a thin, distant, two-dimensional surface. So,
ये सीन को बहुत अच्छी तरह से देखना. Whatever information, memories, जो three-dimensional ये शरीर कर रहा है, it is based upon all the information that is based on the two-dimensional field, ऊर्जा, energy field पर. तो अगर हमें परिवर्तन करना है, तो इस कॉन्शियस में रहकर, मैं शरीर हूं, मैं ये हूं करके कभी चेंज हो गई नहीं. इसलिए काफी बार हम लोग कोशिश करते हुए भी परिवर्तन नहीं हो रहे हैं. आइंस्टीन कहते हैं, टू चेंज अ प्रॉब्लम यू शुड बी इन द सेम कॉन्शियसनेस. मतलब जब तक हम अपने मन को उस फील्ड स्टेज पर लेकर आएंगे और अपने आप को प्रोग्राम नहीं करेंगे, हम लोग थक जाएंगे. इसे काफी बार हम लोग पुरुषार्थ करते करते निराश होते हैं. निराश इसलिए होते हैं क्योंकि गाड़ी कैसे चलानी उसकी टेक्नोलॉजी नहीं पता, और बहुत परमिटेशन कॉम्बिनेशन से युद्ध कर रहे हैं. लेकिन जब हम वो फील्ड स्टेज पर जाते, इसलिए मैं कल कह रहा था, अपने मन को थोड़ा सा साइलेंस पे लेकर आइए. मन को, इतनी जो एक्टिविटी चल रही है ना, उसको थोड़ा सा मौन में लेकर आइए. जैसे ही आप उस साइलेंस पर लेकर आते, यू स्लोली स्टार्ट ड्रिफ्टिंग टुवर्ड दैट फील्ड स्टेट. फिर आपने वो प्रोग्राम किया, आप चेंज कर सकते हो. आप में से कितने भाई बहने अपने आप को चेंज करने की इच्छा रखते, वो जरा हाथ उठाएं. आजू बाजू कोई सो गया होगा तो बुला लीजिए, सुबह सुबह का टाइम है ना, हाथ नीचे करिए. क्योंकि काफी बार यहां पे जो लोग मेडिटेशन करते हैं ना, आराम से सो जाते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है. यहां पे इतने सारे लोग आते हैं, जिनको बहुत नींद का प्रॉब्लम आता, यहां आप आते साथ कहते स्वामी भाई आपका सेशन सुनकर इतना अच्छा लगा और मुझे बहुत गहरी नींद आ गई। मन को जब धीरे से थोड़ी शांति और अच्छी बातें लगती है ना, तो इमीडिएटली हमारा शरीर और मन रेस्ट पर जाता है। पहले मेरे क्लास में अगर कोई सोता था ना, मुझे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन जब से मैं ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय के साथ जुड़ा हुआ हूं, मेरे को उनको देखकर कभी गुस्सा आते ही नहीं है, क्योंकि मुंबई में लोग स्लीपिंग टैबलेट्स लेकर सोते हैं और मेरे क्लास में मेरे बच्चे मेरा सेशन सुनकर सोते हैं। व्हाट अ ग्रेट दुआएं, मेरा दिव्य धन कितना बढ़ रहा है। वेरी गुड, स्लीप इज द ग्रेटेस्ट डिवाइन गिफ्ट ऑफ गॉड। लेकिन स्लीप से, नींद से शरीर को रेस्ट मिलता है, मन को रेस्ट मिलता है, लेकिन परिवर्तन नहीं हो सकता। ये परिवर्तन होने के लिए जो हम लोग बीटा लेवल पर है ना, उसका थोड़ा सा अल्फा लेवल। इसलिए बहने कहते हैं मेडिटेशन करते वक्त थोड़ा सा आंखें खुली रखना, थोड़ा सा आंखें बंद करना। अब लोग ऐसे से करते रहते, पता नहीं राइट पता है। मैं आपको बताता हूं ये अल्फा स्टेज पर क्या बात है, और आज मैं आपको अल्फा स्टेज पर लेकर जाऊंगा, वो फील्ड स्टेज पर लेकर जाऊंगा। लेकिन प्लीज ध्यान रखना, आप लोग डेल्टा पे नहीं चले जाना। डेल्टा मतलब गहरी नींद। एक बार मैं एक स्लीप मैनेजमेंट पे लेक्चर ले रहा था, तो जब मैंने कहा तो एक भाई साहब खड़े होकर कहते स्वामी भाई वैसे मुझे नींद वींद का प्रॉब्लम नहीं आए, लेकिन जब मैं सोता हूं ना तो बहुत खर्राटे मार के सोता हूं, तो मैं कौन से स्टेज पर हूं, बीटा में हूं, अल्फा में हूं, थीटा में हूं या डेल्टा में हूं। मैंने कहा भाई साहब आप खर्राटे मार के सोते मतलब आप तो डेल्टा में हो, लेकिन बाकी सबको बीटा प्लस पर लेके जाते हो। इसीलिए ये जो अल्फा स्टेज पता कब आता है, सपोज अगर आपको कल सुबह 6 बजे उठना है, और जैसे ही 6 बजे उठना है तो आप क्या करते हो, 6 बजे का अलार्म रखते हो। यहां पर आए, वाह जिंदगी वाह के लिए एक्सरसाइज करना जरूरत है, चलो कल से एक्सरसाइज करते। जैसे ही 6 बजे का अलार्म बजता है तो आपके पुराने संस्कार उभर जाते टक। 10 मिनट के लिए सोता हूं, 10 मिनट के लिए सोता हूं, और वो 10 मिनट अति इंद्रिय आनंद का अनुभव देता है। यस और नो? एक ऐसी अवस्था जहां पर आप सोए भी नहीं है तो जागे भी नहीं है, उस समय लोग कहते हैं आपका अंतर्मन बहुत शार्प रहता है। अंतर्मन फिजिक्स के हिसाब से यू आर इन दैट फील्ड स्टेज। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा राइट, हमारी इथोस में ये कहते हैं सुबह सुबह का सपना सच होता है। यस और नो? यस, क्योंकि सुबह आपने उस स्टेज पर अल्फा स्टेज पर जो सोचा, आपका मन एक छोटे बच्चे की मन की तरह हो जाता है, जो बोला भगवदगीता शास्त्र बन जाता है, आप उसको स्वीकार करते हो। अभी आप लोग कॉन्शियस हो, इसलिए मुझे सारा क्वांटम डायनेमिक्स बताना पड़ रहा है, तभी आपकी बुद्धि उसको स्वीकार करती है। लेकिन जब हम अल्फा स्टेज पे होते ना, हमारा मन एक छोटे बच्चे की मन की तरह, जो बोला उसको स्वीकार किया। आज मैं आपको अल्फा पे लेकर जाऊंगा, मतलब उस सूक्ष्म, और जब वहां पर वो परिवर्तन होगा। मुझे याद आता है ये सब बातें मैंने ब्रह्मा कुमारी से तो सीखा ही सीखा, लेकिन मुझे लगता था कि बाहर के लोग क्या रिसर्च कर रहे हैं, और ये जो सारी सब बातें बता रहा है, मैंने एमएससी में पढ़ाई की है, और एमएससी आई हैव डन इट इन द ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकी, आई डिड इट फ्रॉम तमिलनाडु यूनिवर्सिटी। मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण बताता हूं, और आप लोग आज थोड़ा सा मेडिटेशन करके जाने भी दो, यारों करना क्यों जरूरी है। मैं वो सिलेबस इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि इसमें बहुत साइंटिफिक सिद्धांत था, आध्यात्मिक सिद्धांत मैं ब्रह्मा कुमारी से सुन रहा था, लेकिन वैज्ञानिक सिद्धांत मुझे कहीं से जरूरत थी। और जब मुझे पता चला कि तमिलनाडु यूनिवर्सिटी में एक एमएससी का कोर्स है, मैंने उसको अप्लाई किया, मुझे एडमिशन मिला, और वहां पर एक हमारा एक सब्जेक्ट था विच वॉज स्पीकिंग अबाउट पास्ट लाइफ रिग्रेशन, पीएलआर कहते हैं। वेस्ट में पीएलआर इज एन ऑल्टरनेटिव हीलिंग प्रोसेस राइट, और वहां पर एक किताब का रेफरेंस उन्होंने दिया था, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो किताब पढ़ सकते हैं। द नेम ऑफ द रेफरेंस बुक इज मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स, रिटन बाय डॉक्टर ब्रायन वॉइस, अ वेरी फेमस साइकियाट्रिस्ट फ्रॉम द वेस्ट। उसमें हम लोगों ने थ्योरी तो पढ़ा, लेकिन प्रैक्टिकल में एक डॉक्टर आए थे जो हमारे मन के अंदर कोई इमोशंस है, कोई युद्ध चल रहा है, कोई डर है, भय है, एंग्जाइटी है, उसको जाने भी दो यारों करने को विधि बता रहे थे। तो जब मेरा चांस आया, तो जब मैंने वो इनपुट देते हैं, तो मुझको पूछा स्वामीनाथन आपको कोई एक इमोशंस है जो बहुत तकलीफ देती है, या कोई डर है, भय है? मैंने सोचा, मैंने कहा ऐसे तो कोई मुझे नजर नहीं आता है। बोला अच्छा स्वामी भाई बताओ आपको कोई भावना से बहुत ज्यादा जोड़ है क्या? तो फिर भी मुझे नजर नहीं आता। बोला बैठो थोड़ा सोच कर बताओ। तो मैंने कहा, बोला किसी से आपका दीवानगी है, दीवानापन कोई कंसेप्ट के साथ है क्या? मैंने कहा यस सर, मुझे ना मेरा भारत देश बहुत अच्छा लगता है, और बचपन में मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं फॉरेन में नौकरी करने के लिए नहीं जाऊंगा, ये मैं बचपन से कहता था। और जब मैं इंजीनियरिंग पढ़ता था तो लोग मुझे कहते थे, स्वामी तेरा इंग्लिश ठीक है, यू विल बी द फर्स्ट पर्सन टू जंप टू द वेस्ट. मैं कहता चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं जाऊंगा. राइट अच्छा अच्छा उसने कहा वेरी गुड, मतलब आपको देश भारत देश बहुत अच्छा लगता है. मैंने कहा यस आई एम वेरी एक्साइटेड. बोला अच्छा स्वामी भाई आपको किसी देश से नफरत है क्या? मैंने कहा अच्छा कौन सा देश का नाम लिया होगा मैं, कौन से देश का नाम लिया होगा मैं. अच्छा ठीक है ओके. तो बोला अच्छा आप लेट जाओ. लेकिन मैंने कहा मुझे एक देश से जो थोड़ी सी नफरत है दैट इज यूके ब्रिटेन, क्योंकि उन्होंने हमें गुलाम करके रखा था ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते वो. राइट बोला ओके आप लेट जाइए. और जब लेट है तो एक एक जन्म को हम देख सकते हैं. एंड दैट इज अ प्रोसेस, इट्स अ वेरी साइंटिफिक प्रोसेस डेवलप्ड एट द वेस्ट. अचानक मैंने एक सीन देखा जहां मैंने देखा कि मैं टीचर के रूप में एक स्कूल में पढ़ा रहा हूं. और जैसे ही मैंने वो सीन देखा मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि आज के जन्म में मुझे टीचर पढ़ाना बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगता है. तो मुझे वो समझ में आ रहा था यस इट इज दैट इंफॉर्मेशन आई एम कैरीड इन दैट फील्ड, वो भावनाएं वो इमोशंस. और मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं और वो स्वतंत्रता का सैनिक स्वतंत्रता संग्राम का समय था. मैं बच्चों कह रहा हूं बच्चों हमें भारत को स्वतंत्र करना है ना, ब्रिटिशर्स ने हमें गुलाम करके रखा है, हमें इसको इनको बाहर निकालना है. मैं बहुत गुस्से से बोल रहा हूं. और फिर उसका आगे का सीन मैंने देखा. क्या देखा मैंने कि मैं बहुत लोगों के साथ वंदे मातरम भारत मां की जय बोलकर जा रहा हूं, वहां से वो ब्रिटिशर्स आ रहे हैं, बहुत सारे पुलिस वाले आ रहे हैं, वो मुझे बहुत मार रहे हैं, और मैं लास्ट में वो लाठी पकड़ते पकड़ते ओम शांति गया. और जैसे ही मैंने वो सीन देखा मुझे वो समझ में आने लगा कि वो सारी इमोशंस आज मेरे जीवन में क्यों है. फिर उस डॉक्टर ने कहा आगे बढ़ना चाहते हो? मैंने कहा यस. और पता है इमीडिएटली दूसरा जन्म मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि मैं एक छोटे सी बच्ची के रूप में यूके में ग्रेट ब्रिटेन इंग्लैंड में जन्म लेते हुए. वाओ तो दैट वाज सो शॉकिंग. और धीरे धीरे मैंने आगे देखा मैं बड़ी होते होते आई एम अ ब्रिटिश गर्ल. और जैसे ही मैंने देखा मैं इतना पसीना पसीना हो गया. फिर डॉक्टर ने कहा वापस आना चाहते हो? मैंने कहा यस प्लीज टेक मी बैक. और धीरे धीरे वो मन के द्वारा वो लेकर आते हैं. जैसे ही मैं आया तो उन्होंने पूरा पसीना हो गया था तो उन्होंने मुझे एक ग्लास पानी दिया. मैंने पानी पिया और फिर उसने कहा स्वामीनाथन आज की इस एक्सरसाइज से आपने क्या सीखा? मैंने कहा सर आज के इस एक्सरसाइज से मैंने ये सीखा कि अगर हम किसी से बहुत स्नेह प्यार करते हैं तो नजदीक इर्द गिर्द घूमते तो हैं, लेकिन अगर हमने किसी से नफरत किया नाराजगी रखी तो कोई ना कोई जन्म में फिर हम वही जन्म लेंगे. तो अभी मैं फिर से पूछता हूं अगर आपको किसी देश से नफरत है तो प्लीज किसी भी देश का नाम नहीं लेना, नहीं लेना. क्योंकि जब आप वो नाम लेते हो इमीडिएटली वो इमोशंस के साथ वो आपके फील्ड में आ जाता है. ये मैंने उस दिन वहां देखा. आई बिकेम सो रिलैक्स्ड. और इसके बाद जब भी मैं ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय में आया और जब मैंने सारे विश्व के भाई बहनों को यहां देखा तो ऐसे लगा रे ये तो मेरे ग्रेट ब्रिटेन के अपने भाई आ रहे हैं. एंड इट वॉज सो ईजी. उस दिन तक तो मुझे समझ में आई, लेकिन आज मैं आपको वैज्ञानिक आधार पर बताऊंगा. In the last Mind Body Medicine Conference 3 months before, I was in Gyan Sarovar. और Gyan Sarovar में मेरे रूम पर एक अमेरिकन डॉक्टर थे, इंडियन बेस्ड अमेरिकन डॉक्टर. ही वर्क्स ऑन स्टेम सेल थेरेपी, ही वर्क्स ऑन DNA. और उसने ये पूरा मेरा सेशन को अटेंड करने के बाद बोला स्वामीनाथन आप तो बस थियोरी बता रहे हो, मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूं कि अगर आपने कोई इमोशंस या है वो बहुत स्नेह के इमोशंस हो या नाराजगी या नफरत के इमोशंस हो वो धीरे धीरे फील्ड में आ जाता है. और फील्ड में अगर आपने उसको हील नहीं किया तो धीरे 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 आपका वो थ्री डायमेंशनल शरीर में आ जाएगा, आपके DNA में आ जाता है. और आज मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा और वीडियो देखना. और उस वीडियो में यह दिखाया गया बहुत सारे देशों के लोगों को एक कमरे में लेकर आए और उनको बोला कि आपको कौन सा देश बहुत प्रिय है. सभी लोगों ने उस जन्म में जो देश में जन्म लिए हैं वो कहते हैं ये मेरा देश अच्छा है बिकॉज दैट इज द नेचुरल इमोशंस. फिर उनसे पूछा गया कि आप कौन से देश से नफरत करते हो, नजदीक वाले बहुत सारे देश का उन्होंने नाम लिया. फिर उनको DNA टेस्टिंग किया गया. क्या किया गया, उनको एक ट्यूब दिया गया और उसको कहा कि आप अपना सलाइवा जो मुख में जो लार होती है ना वो डालो और उस लार के द्वारा वो चेक कर सकते एंसेस्टर्स को देख सकते. और उसके बाद जो रिजल्ट्स आया इट्स सो अमेजिंग. आई वुड वांट यू टू वॉच दिस. थोड़ा इंग्लिश में है लेकिन आपको उसका कंसेप्ट बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. Would you dare to question who you really are?
My family have served and we've defended this country and we've been to war for this country.
I'm really patriotic about Bangladesh.
Well, I am 100% Icelandic, yeah, definitely.
एक बांग्लादेश कहता है, आइसलैंडिक कहता है.
With my mom in the traditional.
ये लड़की कहती है कि I am from Turkey, Turkish है वो.
We're just proud black, so that's it.
Yeah, I think we are probably the best country in the world, if I'm honest.
Think about other countries and other nationalities in the world.
तो हर व्यक्ति को अपना देश बहुत प्रिय है, स्वाभाविक है. That's okay. अब वो पूछ रहे हैं कौन से देश से आप नफरत करते हो?
Are there any that you don't feel you get on with well or you won't like particularly?
Germany. Yeah, I'm not a fan of the Germans.
You might think they're a little bit...
Particularly India and Pakistan probably because of the whole, you know, the conflict.
Because I have this side of me that's like, that hates Turkish people. Not people, but the government.
But French?
Nah.
We're just best, you know, it's just fact.
I'm more important than you. I don't know you, but in my opinion, I am strong and I am more important than a lot of people.
How would you feel about taking a journey based on your DNA?
Yeah, I feel very intrigued.
What could you possibly tell me that I don't know?
So do you know how DNA works?
तो ये व्यक्ति पूछता है कि DNA टेस्ट लेकर आप क्या मुझे बताने वाले हो जो मुझे नहीं पता है? तो बता रहे DNA कैसे वर्क करता है उसकी फिलॉसफी बता रहे
हैं. So you get half from mum and half from dad. So 50% from each of them, and they get 50% from their parents, and back and back and back, and all those little bits of your ancestor, they filter down to make you, you. I need you to spit in this tube for me. We spit up to the little black line.
That's a lot of spit.
Right, the story of you is in that tube. What's it going to tell me?
It's going to be, oh yeah, you're French, and yeah. Wait, your grandpa.
उनसे पूछ रहे हैं आप इस टेस्ट से आप क्या पता लगाने वाले हो? वो कहेगी मैं फ्रेंच हूँ, मेरे पेरेंट्स फ्रेंच हैं, उनके ऊपर भी फ्रेंच ही होंगे, यही तो बताने वाले हैं.
Friends have French and wait.
100% Bengali. Solid Iraqi.
I'm Cuban.
You're going to tell me that I'm English? No, I've told you.
2 weeks के बाद फिर से वो मिलते हैं DNA टेस्ट के बाद. And the results is very amazing.
Jay, can you come down and join us?
I'm a little bit nervous, I have to say.
So you're ready to find out your results? Will you read it out to us, please?
Look at me.
Oh my God. Oh, wow. Shit. I didn't expect that.
All of them.
Whoa. जो जो देश में आपने प्यार किया वो तो है ही डीएनए में, लेकिन जिन जिन से आप नफरत करते हो वो भी बहुत क्लियरली डीएनए में दिखाई दिया.
नो नो
Caucasus, which was Turkish?
Yeah.
Eastern Europe, Spain, Portugal, Italy, Greece.
I'm 32% British.
What?
Great Britain, 30%. Can we... 5% German.
I'm Irish.
Yeah.
So I'm a Muslim Jew.
Great Britain, 11%. Are you sure these results are mine?
Eastern Europe. Iceland has definitely moved closer to Europe now.
I'm going to go a bit far right now, but this should be compulsory. There would be no such thing as like extremism in the world if people knew their heritage like that. Like, who would be stupid enough to think of such thing as like a pure race?
In a way, we're all kind of cousins.
Yeah, doctor कहते हैं, in a way, we are all cousins. आध्यात्मिक भाषा में आत्मा आत्मा भाई भाई तो सुना था, लेकिन आज विज्ञान कहता है, in a way, we are all cousins. कहीं ना कहीं हम मिले हैं. सूर्योदय और सूर्यास्त का एग्जैक्ट टाइम विज्ञान बताता है. और आपके घर में जो फैमिली मेंबर्स आए हैं आपको क्या लगता है ऐसे ही आए हैं? नो, इट्स अ परफेक्ट कॉस्मिक ब्लूप्रिंट जो हुआ है.
सेंस इन अ मच मोर डायरेक्ट सेंस यू हैव अ कजन in this room.
और इस लड़की से वो कहते हैं कि हम लोग इन इनडायरेक्ट वे तो हम लोग भाई भाई हैं लेकिन इन डायरेक्ट वे आपका एक कजिन इस हॉल में बैठा हुआ है इस लड़की से वो बोल रहे हैं
Turn around and guess who it is. Wash?
Yeah. What's that?
Why don't you come down here and meet your cousin?
I didn't know I did. Like, my heart's pounding right now. I swear to God.
अब ये काम करेंगे हम लोग बस दो मिनट का मेडिटेशन करने के पहले आप एक दूसरे को देखे बैठे रहिए एक दूसरे को देखिए नमस्ते करिए है ना वी आर ऑल कजिन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स पता नहीं कौन से जन्म में कहां पर मिले थे भाई आगे पीछे इस जन्म में आप नेपाल में हो मैं भारत में हूं लेकिन हम भी कभी नेपाल में कभी यूके में एक दूसरे से और अगर नजदीक पति पत्नी बैठे हैं ना तो बहुत स्नेह प्यार से देकर कहो जो कुछ भी गलती हो गई प्लीज माफ करना इस जन्म में मैं थक गया हूं अगले जन्म में और भारत का इतोस कहता है सात जन्मों की कहानी है बाबा ओम शांति माफ करो माफ करो यस फॉरगिवनेस ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए मैं आपको मेडिटेशन करने के पहले अगर मैं आपसे पूछूंगा ये जो मोबाइल है ना इसका वेट कितना है अप्रोक्सीमेटली वेट होगा मे बी 150 ग्राम्स आप इसको होल्ड करके रखिए पांच मिनट के बाद इसका वेट इज 150 ग्राम एक घंटे के बाद द वेट इज 150 ग्राम्स राइट बट इट इज गिविंग मी टेरिफिक पेन सो शायद इंटेलिजेंट इमोशनली इंटेलिजेंट छोड़ो तो छूटो जाने भी दो यारों राइट तो फॉरगिवनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली ना हम लोग किसी और को फॉरगिव करते ही नहीं है किसी ने धोखा दिया किसी ने किया यू गो व्हाट एवर मैकेनिज्म आप करना चाहते हो करो लेकिन सबसे पहले उस व्यक्ति को इमोशनली माफ करना अर्थात अपने आप को माफ करना इतना हम लोग भारी हो जाते ठीक है तो अब क्योंकि आपने अब समझ लिया पूरे एक्सरसाइज में कि इस कॉन्शियसनेस में रहकर परिवर्तन नहीं होगा थक जाएंगे हम लोग हमें वो फील्ड स्टेट वो सूक्ष्म शरीर जिसको इस आध्यात्मिक मंच में अशरीरी अवस्था कहते हैं आज मैं आपको दो तीन मिनट उसका प्रैक्टिस कराऊंगा राइट उसके पहले हम लोग एक एक्सरसाइज करते हैं टू मेक यू चार्ज जब मैं कहूंगा वन तो आप अपना हाथ ऊपर रखना और अभी से नहीं करना कुछ लोग अभी से चालू हो गए देखो पहले और फिर जब मैं कहूंगा यस तो जोर से ताली बजाना और महसूस करना कि मैं उस ईश्वर को टच कर रहा हूं हम सभी आत्माओं के पिता वो परम ज्योति परमात्मा और जब मैं कहूंगा यस तो महसूस करना उनके सभी पॉजिटिव वाइब्रेशन धीरे धीरे आपके पास आ रहे हैं एंड इट इज कमिंग एंड टचिंग योर फील्ड ओके चलिए हियर वी गो वन यस ईश्वर को आप बहुत प्यार से देख रहे हो स्पर्श कर रहे हो यस महसूस करिए रिमझिम 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 उनसे सभी पॉजिटिव वाइब्रेशन धीरे धीरे वापस आ गए आपके पास आ रहे हैं रिलैक्स जैसे हम उस ईश्वर को टच करते हैं ना हम रोग मुक्त हो जाते हैं एक्चुअली रोग शारीरिक हो मानसिक हो क्यों होता है हमारा अगर शरीर में कोई टॉक्सिन्स है तो द्रव्य कहते जिसको जब मैं कहूंगा वन अगर हमारे शरीर में कोई टॉक्सिन्स है तो और शरीर से ज्यादा टॉक्सिन्स तो आत्मा में और सारा फील्ड में स्ट्रेस टेंशन डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन ईगो जेलसी हेट्रेड गुस्सा नफरत द्वेष अहंकार सारा गड़बड़ फील्ड में तो जब मैं कहूंगा वन शरीर में और उस आत्मा फील्ड में कोई भी टॉक्सिन्स है तो उसको इस तरीके से झटक देना और जब मैं कहूंगा यस तो उसको धक्का मार के है ना विदाई करना ठीक है हाँ चलो हियर वी गो वन सभी करिए यस ये क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं सारा विश्व देख रहा है सारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स व्हाट आर यू डूइंग और कुछ बहने तो इतना व्हाट आर यू डूइंग द होल वर्ल्ड इज वॉचिंग यू क्या कर रहे थे बहन जी और भी कितना खुशी से जब ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा ना तो आपकी सखी आपको फोन करेगी मैंने तेरे को लाइव देखा राइट ये क्या कर रहे थे आप कहेंगे पता नहीं स्वामीनाथन है ना मुंबई से आया पता शायद नया योगासन डेवलप किया तो आप अपनी सखी को फोन में समझाना कि हर दिन आप घर में झाड़ू मारते हो ना तो झाड़ू क्यों मारते हो क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि घर का जो कचरा है घर में रहे तो आप उसको झाड़ू लगाते हो उसी तरह इस फील्ड को भी हर दिन क्लीन करना जरूरी है जो सारा इनपुट है ना तो बहुत खुशी से हम डिलीट करेंगे ओके हियर वी गो वन सभी करिए यस थोड़ा झाड़ू मार दीजिए मुंबई में कराने के लिए हर व्यक्ति से 5,000 रुपए लेते हैं इसको ऑरा क्लीनिंग करते हैं हाँ भाई, हाँ ईश्वर को दे दो सभी, जोर से तालियां बजाइए, हाथ नीचे रखिए। ओके ओके ओके, आप में से कितनों को लगता है ऐसे करने से हमारा संस्कार परिवर्तन हो जाएगा, वो जरा हाथ उठाएं। वाह भाई साहब, कितनी अच्छी ऑडियंस है, ऐसे करने से हो जाएगा? गॉड, हेलो, जिंदगी भर करते रहो। हाँ, आपको आर्थराइटिस नहीं होगा इसका गारंटी, हाथ का जो अगर पता नहीं, आई डोंट नो वेदर यू कॉल इट, आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, लेकिन संस्कार परिवर्तन कभी नहीं होने वाला है, इट्स नेवर गोइंग टू हैपन। उसके लिए हम थोड़ा सा साइलेंस में जाएंगे और अपने मन को फील करना। मैं आपको दो मिनट का ही एक्सरसाइज कराता हूं। वो सारे लोग जिन्होंने मुझे कल प्रश्न पूछा था कि मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूं, मैं परिवर्तन क्यों नहीं हुआ हो रहा है, तो मैंने कहा था आज आप सेशन में आइए, मैं आपको साइंटिफिक तरीके से समझाऊंगा। आज आपको वैज्ञानिक स्तर पर समझ में आ गया, तो क्या करना, महसूस करना कि जैसे एक एरोप्लेन होता है ना, तो एरोप्लेन में पायलट होता है, रनवे होती है, तो एरोप्लेन क्या करता है, धीरे से टेक ऑफ करता है, और अगर आप विंडो सीट में बैठे हो तो आप नीचे देखो तो आपको सब कुछ नीचे दिखाई देता है। उसी तरह मैं आत्मा पायलट, मेरा सूक्ष्म शरीर जो है वो है एरोप्लेन, और मेरा ये स्थूल शरीर है रनवे। आज कोशिश करना, और बिलीव मी ये सत्य है, जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे ना, तो आत्मा अपना सूक्ष्म शरीर उस फील्ड को लेकर जाती है, और जिस फील्ड का बहुत ज्यादा इमोशंस उसमें होता है, वहीं पर उसको वो अट्रैक्ट होता है और वहीं पर जाता है। कितना साइंटिफिक रीति से हमारी सभ्यता, हमारे इस बात को कितना साइंटिफिक तरीके से लोग आज समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सो वी शुड बी ग्रेटफुल टू द रियलम ऑफ साइंस। तो आज धीरे से छोड़ो तो छूटो, मतलब क्या है, सबसे पहले इस बॉडी कॉन्शियसनेस से आप डिटैच हो, और जैसे आप अशरीरी होते हैं, यू हैव टेकन द फर्स्ट स्टेप ऑफ परिवर्तन। इधर रहकर आप जितना भी ऐसे से करो, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज, एंड यू एंड मी वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू डू दिस। तब धीरे से आज हमने उस टेक्नोलॉजी को समझा, अगर इवन फॉर 2 सेकेंड्स इफ यू आर एबल टू बिकम दैट अशरीरी, यू हैव टेकन द फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यू आर इन दैट फील्ड स्टेट। आइंस्टीन ने कहा था, यू हैव टू बी इन दैट कॉन्शियसनेस वेयर द प्रॉब्लम इज, एंड यू आर गोइंग टू हैपन। अगर आपको ये कैसे करना है, तो मैं आपको बस एक वीडियो दिखा देता हूं जिससे आपको मदद मिलेगी। सो आई जस्ट टेक अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट विथ यू। पहली बार जब मैंने ये वीडियो देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, जहां मुझे इसका प्रोसेस समझ में आया। मैं चाहता हूं आप सभी इस वीडियो को देखें।
ओम शांति, मैं लाइट माइट का फरिश्ता शुभ भावों से भरपूर हूं, अपनी संकल्प शक्ति।
तो आप देख रहे हैं एक स्थूल शरीर है, आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर को धीरे से वो डिटैच हो रही है। मृत्यु के बाद यही एक्चुअली होता है, काफी जन्म मृत्यु का खेल करके हम यहां पर आज पहुंचे हैं रंगमंच पर, तो हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। अब डिटैच होकर फिर उस कॉन्शियसनेस में आप, अगर आप ईश्वर को याद करोगे, तो आपके फील्ड में सारे पॉजिटिव इमोशंस आने लगेंगे।
बारा, मैं शुभ चिंतक फरिश्ता धीरे धीरे इस देह से निकलकर शहर के ऊपर जाता हूं, सर्व गुणों शक्तियों के सागर ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा शिव बाबा से सुख शांति पवित्रता की किरणें मुझ फरिश्ते पर बरस रही हैं। मुझ फरिश्ते के माध्यम से ये प्रकंपन पूरे शहर में फैल रहे हैं। शहर का वातावरण स्वच्छ और पवित्र बन रहा है, सुख शांति से भरपूर हो रहा है।
ओके, अब ये वीडियो अगर हम लोगों ने बहुत बार देखा तो उससे हमारे संस्कार परिवर्तन नहीं होंगे। वीडियो देखा वो टेक्नोलॉजी से, हमने वो टेक्निक को महसूस किया, अब हम थोड़ा सा डिटैच होंगे। बस मैं आपका आधा मिनट लूंगा, फिर हम आदरणीय आत्म भाई जी से उनके अनुभवों को सुनेंगे, जो बहुत समय से इस अशरीरीपन का और इस राज्यों का अभ्यास कर रहे हैं। तो सभी सीधे बैठें, अपने जहाज को सीधे रखें, आपका जहाज बहुत इंपॉर्टेंट जहाज है, राइट? अब हम क्या करेंगे, महसूस करेंगे, हम धीरे से यहां डिटैच हो रहे हैं, आप उसको देखने का प्रयास नहीं करेंगे, लेकिन होते होते सबसे पहले आज आप अपने घर में जाना और एक सेकंड में आप अपने घर में पहुंच जाओगे। घर में जाकर जो सारे फैमिली मेंबर्स हैं उनको बहुत दिल से माफ करना, फॉरगिव देम। चैरिटी बिगिन सेट हो, और अगर हमसे कुछ गलती हुई है तो उनसे माफी मांगना। डू दिस, तो आप क्या कर रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं, वो भी स्वतंत्र, आप अपने आप को भी स्वतंत्र कर रहे हैं। और मन बुद्धि के द्वारा इस फरिश्ते स्वरूप में आप जहां चाहिए, आपके बच्चे विश्व में कहीं पर भी हो, आपके फैमिली मेंबर्स कहीं पर भी हो, एक सेकंड के द्वारा आप पहुंच सकते हो। ठीक है, चलिए। सो जो मैं बोलूंगा वो ध्वनि आपके मन तक पहुंचेगी, आप अपने बुद्धि के द्वारा धीरे 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 आप यहां कर सकते हो। जैसे अगर आप किसी को फोन करते हो, तो जब आप फोन करते हो तो बात तो आप उनको मोबाइल में कर रहे हो, लेकिन उनका स्वरूप एकदम सामने दिखाई देता है, राइट? तो उसी तरह आप वो स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप बनकर आप अपने घर में जाना, सभी को माफ करना, और स्वयं उनसे अपने आप को माफ करना, माफी देना, उनसे माफी मांगना। ठीक है, हल्कापन हो जाएगा। Here we start। आराम से बैठे, महसूस करिए ये शरीर रूपी जो रनवे है उसमें एक्चुअल एरोप्लेन जो नहीं दिखता है वो होता है, और वो है हमारा अपना फील्ड, सूक्ष्म शरीर, और मैं आत्मा रूपी पायलट। आज मैं शांति दूत, आई एम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ पीस, लव एंड हैप्पीनेस। महसूस करिए जैसे एरोप्लेन धीरे से रनवे से डिटैच हो रही है, उसी तरह मैं आत्मा अपने उस फील्ड को लेते हुए धीरे से डिटैच होता हूं, उस शांति और प्रेम के सागर, परम ज्योति परमात्मा के वाइब्रेशंस मुझ तक पहुंच रहे हैं, और मेरे फील्ड में सारा परिवर्तन हो रहा है। आई एम बिकमिंग मोर पॉजिटिव, ये सारे पॉजिटिव वाइब्रेशंस को लेते हुए एक एंजल के रूप में, एक फरिश्ते के रूप में आप अपने घर पहुंच रहे हो। यू आर लाइक एन एंजल एंटरिंग योर होम स्वीट होम। आपके सभी फैमिली मेंबर्स, चाहे कितना भी कॉन्फ्लिक्ट क्यों ना हो, आज आपको रहस्य समझ में आया, उनको दिल से माफ करिए, फॉरगिवनेस, माफ कर दीजिए, आई फॉरगिव यू। और अगर हमसे कुछ गलती हुई है तो दिल से माफी मांग लीजिए, आई एम सॉरी। आपके सारे नेगेटिव वाइब्रेशंस को आज आप लेट गो कर रहे हो, एंड यू आर बिकमिंग अ मैसेंजर ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। आप और दूर बादलों के ऊपर जाइए, सारा पृथ्वी को आप देख रहे हो, जन्म जन्मांतर, मैंने कौन से देश में जन्म लिया है। लेट द होल वर्ल्ड बिकम अ गुड प्लेस टू लिव। समस्त विश्व के आत्माएं मेरे कसिन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं। ये धरती जन्नत बन जाए, हेवन बन जाए, सत्युग आ जाए, हर आत्मा सुख और शांति की महसूसता करे। ईश्वर से प्रार्थना करते हुए बादलों से होते हुए नीचे धीरे धीरे आप नीचे आ रहे हैं। आत्मा रूपी पायलट अपने सूक्ष्म शरीर रूपी एरोप्लेन को लेते हुए धीरे से नीचे आ रहे हैं। आपको सारी पहाड़ियां दिखाई दे रही है, आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है, रास्ते दिखाई दे रहे हैं, गाड़ियां दिखाई दे रही है, लेकिन आप सब इससे अलग, और आपको अपना रनवे शरीर दिखाई दे रहा है। मैं अलग हूं शरीर से, लेकिन अपने कर्म योग का पाठ बजाने के लिए धीरे धीरे मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर रूपी एरोप्लेन को लेकर धीरे से शरीर रूपी रनवे में लैंड कर रही हूं. लैंडिंग सक्सेसफुली कंप्लीटेड. ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति. अपने दोनों हाथों को सामने रखें. सारे पॉजिटिव वाइब्रेशंस. कोई तालियां नहीं बजाएंगे. तालियां बजाने से ना अचानक फिर से हम उस इस देह भान में आ जाते हैं. आप सभी का बहुत बहुत दिल से थैंक्स. ओम शांति.